14 मई इंडिया बोल दिन शनिवार, मैं हूं रेहान फतल। रियो ओलंपिक में सिर्फ 3 महीने शेष, इस बात पर विवाद अभी थमा नहीं है कि कुश्ती के 74 किलोग्राम वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करे। नरसिंह यादव, जिन्होंने विश्व प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, या सुशील कुमार, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 पदक जीते हैं। क्या रियो जाने के लिए दोनों के बीच मुकाबला होना चाहिए? यही है विषय आज के इंडिया बोल का। अगर आप कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पर मुफ्त फोन करें, 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, विनीत खरे से। लेबनन के शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला का कहना है कि सीरिया में उसके शीर्ष सैन्य कमांडर मुस्तफा अमीन बदरुद्दीन की हत्या सुन्नी चरमपंथियों की गोलीबारी में हुई थी। बदरुद्दीन की हत्या दमिश्क हवाई अड्डे के नजदीक हुई थी, जिसकी घोषणा शुक्रवार को की गई। बिना किसी गुट का नाम लिए हिजबुल्ला ने बयान जारी कर कहा, जांच में पता चला है कि दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नजदीक हमारे केंद्र को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से कमांडर मुस्तफा बदरुद्दीन शहीद हो गए। इस क्षेत्र में तकफीरी समूहों ने बमबारी की, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तकफीरी शब्द उन चरमपंथियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मानते हैं कि मुसलमान समाज खुदा के रास्ते से भटक गया है। एक बीबीसी संवाददाता ने कहा कि अभी भी बदरुद्दीन की मौत को लेकर रहस्य बरकरार है। मुस्तफा बदरुद्दीन दशकों से हिजबुल्ला के साथ रहे हैं। उन पर 2005 में लेबनन के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या में हाथ होने के आरोप लगे थे। बांग्लादेश में पुलिस ने कहा है कि करीब 70 साल के एक बौद्ध सन्यासी की दक्षिण पूर्व बंदरबान जिले में किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, सेक्युलर ब्लॉगर्स, कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की हत्याएं हो रही हैं। एक अधिकारी के अनुसार बौद्ध सन्यासी का शव एक मंदिर में पाया गया। पुलिस को शक है कि करीब 4 या 5 लोगों ने सन्यासी पर हमला किया होगा। संदिग्ध इस्लामी चरमपंथियों ने पिछले 3 सालों में 20 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी है। इन हत्याओं के लिए इस्लामिक स्टेट और अलकायदा के बांग्लादेशी धड़े ने जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन सरकार ने इन हमलों के लिए घरेलू इस्लामी चरमपंथियों को दोषी ठहराया है। नाइजीरिया में चरमपंथ से निपटने के लिए सम्मेलन चल रहा है, जिसमें बातचीत का केंद्र है बोको हराम चरमपंथियों से पेश खतरे। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आगाह किया था कि बोको हराम के इस्लामिक स्टेट के साथ बढ़ते रिश्तों के कारण पश्चिमी और केंद्रीय अफ्रीका में शांति और स्थिरता को खतरा है। इस सम्मेलन का मकसद है बोको हराम के खिलाफ युद्ध में क्षेत्रीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद भी इस सम्मेलन में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में नाइजीरिया और फ्रांस के बीच सहयोग बढ़ाने की कोशिशों के महत्वपूर्ण नतीजे निकले हैं। फ्रांस ओलांद कह रहे थे कि आतंकवादी गुट बोको हराम लगातार आम लोगों पर हमले कर रहा है और हत्याएं कर रहा है। इस गुट ने लड़कियों को अगवा कर लिया, जैसे चिबूक में हुआ। इस आतंकी संगठन को कमजोर किया गया है और पीछे ढकेल दिया गया है। जिन इलाकों पर इस संगठन का कब्जा था, इस संगठन को उन इलाकों से बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी ये संगठन खतरा है। बोको हराम का प्रभाव आसपास के कई देशों में है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी ने मई 2015 में एक साल में बोको हराम को हराने का वायदा किया था, लेकिन वो अभी तक इस वायदे को पूरा नहीं कर पाए हैं। और सीरिया से आ रही रिपोर्टों के अनुसार इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पूर्वी शहर डेर अल ज़ोर स्थित एक अस्पताल पर हमले कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस्लामिक स्टेट ने हमले में सरकार समर्थक सुरक्षा बलों के 20 सदस्यों को मार दिया है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले,
अफसर बोले,
पैसा बोला,
बंदूक बोली,
अभिनेता विलेन बोले,
नहीं बोल सके तो बस
आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल,
बीबीसी इंडिया बोल।
इंडिया बोल में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फतल का। 83 दिन बाद शुरू होने वाले रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए 2 पहलवानों में जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार हैं, तो दूसरी ओर विश्व प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाले नरसिंह यादव। सुशील कुमार मांग कर रहे हैं कि यादव के साथ उनका ट्रायल मैच हो। उधर यादव कह रहे हैं कि 74 किलो का कोटा उन्होंने जीता है, इसलिए वो ही रियो जाएंगे। उधर सुशील ने इस मामले में प्रधानमंत्री और खेल मंत्री के दखल की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाला है। रियो में 74 वर्ग में इनमें से किसको जगह मिलनी चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं मशहूर खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम। पहले सुनते हैं नरसिंह यादव का इस मामले में क्या कहना है।
मेरा हक भी बनता है और आप देखेंगे कि आज तक जो भी रेसलर क्वालिफाई किया वही ओलंपिक गया है, तो इस बार भी मैं ही जाऊंगा। देखिए, हम कहीं भी लड़ने के लिए पीछे नहीं हटते हैं। जब हम और चैंपियनशिप वर्ल्ड मेडलिस्ट और ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर से उनको लड़ के उनको हराया है, तो हम किसी से नहीं डरते हैं। बाकी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो भी निर्णय लेगी हमें मंजूर है, वो परफॉर्मेंस देख के और कुश्ती के हित में अपने देश के हित में ही डिसीजन लेगी। जो भी डिसीजन लेती है मुझे रियो भेजने का, तो मैं उसके लिए संतुष्ट हूँ।
नरसिंह यादव कह रहे थे किसी से नहीं डरते। आइए देखें सुशील कुमार की राय क्या है इस मामले में।
मैं ये नहीं कहता कि सुशील ने दो मेडल जीते तो सुशील को भेज दो ना, जो भी मेरे में से और नरसिंह में से तगड़ा है वो देश के लिए जाए और देश के लिए मेडल जीते। हमारी सरकार ने, हमारी फेडरेशन ने जो मेरे पे खर्चा किया है 2 साल से, वो इसीलिए किया है कि हाँ मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। जो नहीं करनी होती तो मेरे को पहले मना कर देते कि नहीं ये प्रोसीजर नहीं करेंगे। तो देश ने खर्चा किया है, फेडरेशन ने खर्चा किया है, तो मैं मानता हूं कि अभी हमारी जो अध्यक्ष हैं, हमारी जो और अधिकारी हैं फेडरेशन के, तो वो लोग बैठ के मीटिंग करेंगे उस चीज पे, उस पे सही निर्णय लेंगे।
सुशील कुमार तर्क दे रहे थे अपने पक्ष में। नॉरिस से पहले कि श्रोताओं के फोन लें, आप बताएं, आप इन दोनों पहलवानों को उच्च स्तर पर बहुत नजदीक से देख चुके हैं, इनके क्या प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं?
देखिए रेहान साहब, इन दोनों का प्लस और माइनस बताना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है, और अगर इतना आसान ये होता तो जिस हालत में हम पहुंची है ये कंट्रोवर्सी इतनी होती ही नहीं, क्योंकि इनका बताना बहुत मुश्किल है, इसीलिए प्रॉब्लम है। और जहां तक ये बोल रहे हैं नरसिंह कि मेरा हक है, तो मुझे लगता है कि हक किसी का नहीं होता, क्योंकि कोटा जो है वो एक इंडिविजुअल या व्यक्तिगत खिलाड़ी को नहीं मिलता बल्कि देश को मिलता है, और फेडरेशन का ये होता है कि वो किसको डिसाइड करे, किसको भेजे। दूसरी तरफ सुशील जो कह रहे हैं मेरे ऊपर पैसा खर्च हुआ है, अब उन्हें ये बात याद आ रही है, जब वो ट्रायल थी लास वेगस की तब उन्हें याद नहीं आई, तब उन्होंने ट्रायल में हिस्सा नहीं लिया, तो शायद वो चले जाते तो ये सब नहीं होता। PWL लीग हुई इंडिया में, तब उन्होंने नहीं किया। तो दोनों कहीं थोड़े थोड़े वो हैं, गलती पर हैं, लेकिन एज ए खिलाड़ी दोनों बहुत ऊंची कोटि के हैं, तो इसलिए ये जब तक फेडरेशन डिसाइड ना करे कौन नहीं जाएगा, हम अटकने लगाते रहेंगे।
तो आइए पहला फोन लेते हैं, मेवा सिंह जहानाबादी दिल्ली से टेलीफोन लाइन पर हैं। मेवा, आप अगर बात सुन पा रहे हो तो अपनी बात रखिए।
बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरा ये कहना है सर, सुशील कुमार को सर मौका दिया जाए, क्योंकि सर वो हमारे लिए 2 बार कंसेक्यूटिव मेडल ला चुका है सर, तो सर उसकी बात मानी जाए।
ये कह रहे हैं सुशील कुमार को मौका दिया जाए, 2 बार मेडल ला चुके हैं, इतिहास यानी जो पहले चीजें हो चुकी हैं उस हिसाब से तो किसी व्यक्ति को कभी रिटायर ही नहीं होना चाहिए, क्या कहते
हैं? दूसरी बात ये भी है कि ये बात सही है कि 2 मेडल लाए हैं, और बीजिंग का भी और लंदन का, दोनों जगह मैं हाजिर था, मैं एज ए पत्रकार वहाँ था, मुझसे अच्छा शायद कोई नहीं जानता होगा, दोनों ने दोनों मेडल बहुत अच्छे आए थे। लेकिन यहाँ सवाल उन 2 मेडल का नहीं है, उस भार वर्ग का है। सुनिए साहब, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि जो उन्होंने मेडल लिए थे वो 66 किलो वर्ग में लिए थे, और रियो में जो मुकाबला होगा वो 74 किलो में होगा।
तो और प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है सर? वो नहीं नहीं,
प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपका मतलब नरसिंह तैयार नहीं है क्या? है ना, नरसिंह भी तैयार है, वो भी यही कह रहा है, हम सब जानते हैं दोनों तैयार हैं। मैं आपको, मैं किसी के साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि क्या बात है। सब बोल रहे हैं 2 मेडल तो हैं, लेकिन वो 2 मेडल उनके 66 किलो में हैं। और अगर आप इन 2 मेडल की बात करें तो मैं बताऊंगा, नरसिंह ने पिछले 3-4 साल में 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बड़े बड़े मेडल लिए, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स है, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप है, और बाद में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया, जिसमें सारे दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी आते हैं। तो इसलिए उनका ये कहना कि उनका पक्ष भारी नहीं है, बराबर है। मैं मान के चल रहा हूँ कि दोनों बराबर हैं, अब क्या होगा ये आगे समय बताएगा।
सर ऐसे होता सर, प्रतिस्पर्धा कराने से सर वो देशित नहीं होगा सर, जो जीतेगा वो रियो के लिए जाएगा, तो सर फाइनली हमारे लिए फायदेमंद होगा।
नहीं, अब तो वो ही हो रहा है ना कि भाई जो नरसिंह आए हुए हैं सुशील चैलेंज कर रहे हैं कि भाई आ जाओ मेरे से लड़ो, अब तो वही हो गया।
तो और नॉरिस इस समय टेलीफोन लाइन पर एक साहब मौजूद हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
सर नमस्कार, मैं सुरेश भदारा बोल रहा हूँ बीकानेर से।
जी सुरेश जी, क्या कहना है आपका?
सर मुझे लगता है नरसिंह यादव को भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार इसी कैटेगरी से खेल रहे हैं। और सुशील अपनी वजन कैटेगरी चेंज करके आए हैं, तो मुझे लगता है वो उपयुक्त नहीं है।
ये कहना चाह रहे हैं नरसिंह,
ये वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा था।
नरसिंह यादव का दावा ज्यादा मजबूत है, और आपको क्या ये लगता है कि ये टेलीफोन लाइन कट गई? लेकिन हाँ, इनके प्रश्न का जवाब तो जरूर दिया जाएगा। नरसिंह यादव को अगर भेजा जाता है तो कितने सफलता की क्या गारंटी आप देखते हैं? विश्व स्तर पर वो कांस्य पदक तो जीत चुके हैं, लेकिन सारे पहलवान चोटी के होंगे वहाँ पर।
देखिए, जो भी जाएगा, चाहे वो सुशील जाए, चाहे नरसिंह जाए, कोई भी जाए या किसी और कैटेगरी में भी जाए, कोई दावे से ये नहीं कह सकता कि मैं पदक लूँगा, क्योंकि मुश्किल हो जाता है बहुत। लेकिन यह है कि क्योंकि नरसिंह यादव एक ऊंची प्रतियोगिता में, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, जिसमें मैंने पहले भी बोला कि सारी दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी आए थे और 74 किलोग्राम वर्ग वाली में आए थे, और वहाँ उन्होंने मेडल लिया, और जिससे वो हारे सेमीफाइनल में, वो सिल्वर मेडल लिया उन्होंने, तो ये एक बड़ी बात है। और जिसको उन्होंने हराया वो अब यूरोपियन चैंपियन है आजकल, तो इसलिए उनको ये, और जिस आदमी ने एक बार ही साबित कर दिया है, मेरे ख्याल है उसका थोड़ा पलड़ा भारी होता है, बजाय इसके कि जो ये कहे कि मैं ये करूँगा। तो इसलिए मुश्किल तो है दोनों के लिए, लेकिन उम्मीद दोनों पे रह सकती है।
आइए एक और श्रोता से बात करते हैं, इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं अजय कुमार। अजय बताइए, आपका क्या सवाल है?
सर, मेरा सवाल तो, बल्कि मैं तो सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा कि भारत की कुश्ती आज इस लेवल पे आ गई है कि एक एक कैटेगरी में दो ऐसे पहलवान है जो दोनों ओलंपिक में जाके मेडल जीत सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात तो यही है कि हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारे पास आज बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है रेसलिंग में, और हम पावर हाउस बन गए हैं। और दूसरी बात यह है कि सर, सुशील दो बार प्रूव हो चुके हैं कि वो बहुत अच्छे पहलवान हैं, और उन्होंने जिस तरह से दो बार मेडल जीते हैं, और हो सकता है कहीं ना कहीं नरसिंह यादव भी उनसे प्रभावित हो कि वो ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं सुशील कुमार, और आज सुशील कुमार को बिल्कुल मौका मिलना चाहिए कि वो नरसिंह यादव के साथ फाइट करें, और नरसिंह यादव सामने आए और वो अपना लोहा मनवाए यहाँ पे, और अगर जीत जाते हैं तो वो चले जाए, और अगर सुशील हार जाते हैं तो सुशील अपना ये कहें कि नरसिंह यादव उनसे अच्छे हैं तो नरसिंह यादव चले जाए, लेकिन सुशील जीत जाते हैं तो सुशील।
लेकिन अजय, इससे पहले कि नॉरिस इस पर रिस्पॉन्ड करे, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि एक खिलाड़ी क्या ता उम्र उसी फॉर्म को मेंटेन कर सकता है? सुशील कुमार 3 ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, बल्कि शायद 4 ओलंपिक, चौथा ओलंपिक होगा अगर वो जाएंगे। क्या वो उसी फॉर्म को ता उम्र मेंटेन रख सकते हैं? इवन सचिन तेंदुलकर का भी वक्त आता है रिटायर होने का,
जबकि ये गेम जो है कुश्ती जो है कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, ये स्किल का नहीं है।
जो आपने ये सवाल किया ना, बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा सुशील के पास में 3 ओलंपिक का अनुभव पहले से ही है, और वो जानते हैं कौन से पहलवान से उन्होंने किस तरह से फाइट लड़नी है। बहुत सालों से वो उन पहलवानों को देख रहे थे कि ऐसा नहीं है कि ओलंपिक में कोई नया पहलवान आ जाएगा जिसे कोई नहीं जानता, वहां पे भी वही सब खिलाड़ी खेलेंगे आके जो ऑलरेडी पहले कोई वर्ल्ड चैंपियनशिप खेला हुआ है, कोई एशियन चैंपियनशिप में खेला है, उनके साथ कोई कॉमनवेल्थ में खेला है, यानी कि सभी खिलाड़ी ऐसे होंगे जिनको वो चिर परिचित उनके प्रतिद्वंदी है, उनके लिए उन्होंने पहले से रणनीति तैयार की हुई है। तो ये कहना कि उनकी फॉर्म या इस बारे में, और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुशील कुमार ऑलरेडी सिल्वर मेडलिस्ट है ओलंपिक्स के, उनके पास एक अलग ही अनुभव है, अलग ही कॉन्फिडेंस है, और नरसिंह यादव को चाहिए कि वो सुशील कुमार से, उनके अनुभव से कुछ फायदा उठाए, उनके साथ फाइट करें, और अगर जीत जाते हैं तो नरसिंह यादव चले जाए, सुशील जीत जाते हैं।
एक मिनट सुनिए, जिस अनुभव की आप बात कर रहे हैं, जिस एक्सपीरियंस की आप बात कर रहे हैं, वही एक्सपीरियंस नरसिंह यादव ने सुशील से लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया है। जो हाल की परफॉर्मेंस है, जिसमें उन्होंने मंगोलिया के उनुरबत प्रजेव से वो हारे सेमीफाइनल में, और उन्होंने बाद में वो सिल्वर मेडल लिया, तो उनकी परफॉर्मेंस कम नहीं है किसी भी हालत में। हम लोग ये बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि सुशील को जाना चाहिए या नरसिंह को जाना चाहिए या इसको नहीं जाना चाहिए उसको नहीं, हम दोनों का आंकलन कर रहे हैं सिर्फ। तो इसलिए ये कहना कि उसका एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि नरसिंह यादव का भी एक्सपीरियंस है और हाल का एक्सपीरियंस है, अभी 7-8 महीने पहले ही उन्होंने अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लिया है, और जॉर्डन बरोज जो डबल ओलंपिक चैंपियन है और एक लेजेंड है बिल्कुल रेसलिंग में, उन्होंने उसके लिए नरसिंह के लिए बोला कि ऑसम शब्द का इस्तेमाल करा और बोला कि इसको भारत के लिए ये बहुत अजीब एक चीज़ पैदा हुई है, इसको संभाल के रखिए, ये रियो में आपके लिए कमाल दिखाएगा। अगर जॉर्डन बरोज ये बात बोल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा नरसिंह यादव का भी सोचना चाहिए, मुझे ये लगता है।
नॉर इट्स सुशील, अभी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, ये कह रहे थे कि रियो के लिए वो दो सालों से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि उन्होंने क्यों नहीं यादव की तरह क्वालिफाई कर लिया ताकि सबका मुंह बंद हो जाता।
अब ये देखिए रेहान साहब की अगरचे की चावल और मगरचे की दाल, अगर ये हो जाता तो ऐसा होता और वैसा, अब तो हम चलती करते ही रहेंगे ये बातें। मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अगर होता तो शायद ये सब नहीं होता। उनके पास दो बड़े अच्छे मौके थे, एक तो जब लास्ट वेगस की ट्रायल थी उसमें नहीं आए, जिसमें जाके नरसिंह यादव का मेडल आ गया। उसके बाद जब इंडिया में लीग हुई जिसमें दुनिया के अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे और सब लोग आए थे, उन्होंने उसमें कम्पीट नहीं किया, उससे और उनका जो केस जिसे अगर कहें थोड़ा सा वीक हो गया। और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो 74 किलोग्राम की जो वर्ग में नरसिंह यादव ने पिछले 4-5 साल में एक के बाद एक 5 बड़े बड़े मेडल जीते हैं, जिसमें एशियन चैम्पियनशिप है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स का मेडल है उनके पास, वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मेडल है, तो इन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता उनकी परफॉर्मेंस को।
लेकिन वो ये भी कहते हैं, आपने सुना कि अगर नहीं भेजना था तो 2 साल प्रैक्टिस क्यों कराई, इतना पैसा क्यों खर्च किया सरकार
नहीं,
ने उनके ऊपर।
लेकिन किसी ने कहा भी नहीं था कि ट्रायल होगी, किसी ने नहीं कहा था कि ट्रायल होगी। अगर ये बिल्कुल तर्क उनका मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, निष्पक्ष रूप से अगर देखा जाए, तो किसी ने नहीं कहा था ट्रायल होगी और अब नहीं हो रही, ऐसा नहीं कहा था किसी ने।
आइए एक और श्रोता को लेते हैं, नवल किशोर इस समय टेलीफोन लाइन पर हैं। नवल, क्या पूछना चाह रहे हैं आप?
हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो नरसिंह यादव हैं उन्होंने 1 साल पहले क्वालिफाई किया है ओलंपिक के लिए, और जो पहला हक बनता है वो नरसिंह यादव का ही बनता है। उन्होंने कोटा हासिल किया है, मेहनत करके किया है, और दूसरी बात है ओलंपिक में हर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है, हर किसी का सपना होता है, तो उन्होंने ये सपना पूरा किया क्वालिफिकेशन को करके, विश्व कप में उन्होंने कांस्य पदक जीत के किया, तो पहला हक उनका बनता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक स्वस्थ परंपरा विकसित होनी चाहिए इस देश में कि जो क्वालिफाई करे वही ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे। दूसरी बात, सुशील कुमार की बात हो रही थी, इसमें कोई दोहरा नहीं कि सुशील कुमार ने देश के लिए गौरव अर्जित किया, 2 बार पदक जीते, और लेकिन एक बड़ी बात अभी जो कह रहे थे कि वो 66 किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने दोनों पदक जीते और उन्हें अब 74 ग्राम में उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, तो इस मामले में नरसिंह यादव उन पर भारी पड़ते हैं।
नवल जी, जो आप जो क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं ना, उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक क्लियर कर दूं जो कि सबको सुनने वालों को पता होना चाहिए। वो बात यह है कि ये क्वालिफिकेशन इसलिए 1992 के बाद से, बार्सिलोना के बाद से क्वालिफिकेशन शुरू हुई क्योंकि रेसलिंग जो थी वो बहुत पॉपुलर हो गई थी और बहुत ज़्यादा रेसलर्स ओलंपिक खेलों में आ रहे थे, जो बड़ा मुश्किल था, वरना 1 महीने तक कॉम्पिटिशन चलता रहता। उसको कम करने के लिए ये क्वालिफिकेशन हुआ था। अब सवाल ये है कि अगर किसी ने 1 साल पहले क्वालिफाई कर लिया और हम बोलें कि वो ही जाएगा, और गेम्स से 1 साल के बाद जब गेम्स हों और वो रिटायर हो जाए या अनफिट हो जाए, उस सूरत में क्या होगा? इसीलिए ये बात कही जाती है कि ये कोटा जो है एक कंट्री के लिए है, किसी व्यक्तिगत रेसलर के लिए नहीं है, ताकि अगर इस केस में मान लीजिए नरसिंह के चोट लग जाती तो सुशील या और भी कोई 74 किलो का होता, वो 18 जुलाई जो कि आखिरी तारीख है एंट्री नाम से भेजने की, 18 जुलाई तक उनमें से कोई भी भारतीय खिलाड़ी जा सकता था। यही एक कोटा के लिए इसलिए बनाया जाता। कोटा का मतलब ये नहीं जिसने क्वालिफाई किया और वो ऑटोमेटिक ओलंपिक में चला गया।
और नवल जी, एक चीज की और मैं और आपका ध्यान दिलाऊंगा, नॉरिस भी शायद इसको मानेंगे, ये सही है कि नरसिंह यादव ने कांस्य पदक जीता जरूर था विश्व प्रतियोगिता में, लेकिन जो उनके फ्रेंच प्रतिद्वंदी थे जालिम खां खादेयेव, अंतिम क्षणों में उन्होंने बाजी हार दी थी, वो लीड कर रहे थे, लेकिन ये भाग्य था कि नरसिंह यादव वहाँ जीते। लेकिन ओलंपिक में इस तरह का भाग्य दोबारा मिलना क्या संभव होगा?
नहीं, यहाँ तक भाग का सवाल है तो भाग्य में तो विश्व चैंपियनशिप में भी भाग्य पे नहीं डिसाइड होता। अगर जो कोई हारा है उसका दिल नहीं कर रहा होगा हारने का, तो ये तो एक विडंबना है ये खेलों की कि इसमें भाग्य का हमेशा साथ होना होता है। आप देखिए बड़े से बड़े खिलाड़ी के साथ होता है ये कि हार जाते हैं, जब भी तो ये कहानियाँ रह जाती हैं। अगर ये सब ना होता तो हम डिस्कस क्यों करते ये सब बातें?
आइए देखते हैं टेलीफोन लाइन पर कुछ और श्रोता मौजूद हैं बात करने के लिए तैयार। सबसे पहले तो अपना परिचय दें और बताएं कहाँ से बोल रहे हैं।
हेलो, मैं पठान खान गज्जू बाड़मेर कितनौरिया गांव से बोल रहा हूँ।
जी जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप?
मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अब ये हमारे कुश्ती वालों के विवाद हो गए क्योंकि इनके दोनों के बीच में मुकाबला होना चाहिए।
ये कह रहे हैं मुकाबला होना चाहिए, कितना
इन दोनों के बीच मुकाबला होगा तो एक हारेगा एक जीतेगा वही आगे बढ़ेगा।
लेकिन एक मुकाबले से फॉर्म का पता कैसे चलाया जा सकता है ये बताइए, भाग्य भी हो सकता है, एक दिन कोई ऑफ फॉर्म भी हो सकता है, क्या इसके बल पर यह फैसला किया जाए कि वो भारत का प्रतिनिधित्व करे एक मुकाबले के आधार पर?
ऐसा है कि अब तो दोनों के बीच में एक तो जीत जाएगा, दोनों के बीच में एक को मौका दिया जाएगा तो उन पर दबाव होगा पूरे भारत का।
या नॉरिस आप क्या कहना चाहेंगे, सीरीज अबाउट दो या तीन मुकाबले?
सीरीज क्या, मैं तो बल्कि कहूंगा कि एक भी नहीं होना चाहिए। उसका एक सबसे बड़ा जो एक कारण जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये कि हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम उस पदक के लिए कर रहे हैं जो हम दोनों खिलाड़ियों से लेने की उम्मीद रखते हैं ओलंपिक पदक की, और हमें लगता है कि दोनों इस लायक हैं कि पदक ले सकें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर ये ट्रायल हो गई तो जो हमारा चांस है पदक आने का वो मुश्किल से 4-5% रह जाएगा, क्योंकि इस वक्त क्या हुआ हुआ है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा एक मेंटल जिसमें मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा हुआ है। इस वक्त दोनों में से कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा है, हर वक्त सुशील कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के चक्कर काट रहे हैं बेचारे, कहीं राजनाथ सिंह जी के पास जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, उधर नरसिंह जो है वो ट्रेनिंग छोड़ के बैठे हैं कि मेरा क्या होगा। तो इस वक्त जो दोनों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव इतना है कि हम मेडल की उम्मीद अभी से छोड़ देनी चाहिए हमें, और अगर ट्रायल हो गई तो वो जिसको अंग्रेजी में ब्लड बाथ बोलते हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे होकर लड़ेंगे, और उसके बाद कॉन्टैक्ट स्पोर्ट में 1-1.5 महीने तक रिकवरी नहीं हो पाएगी और ट्रेनिंग नहीं होगी, और जब ये रियो जाएंगे तो दोनों इस लायक नहीं होंगे कि मेडल ले सकें। मुझे सबसे बड़ी चिंता उस बात की है।
नॉरिस, ये जो डिमांड, ये जो मांग उठ रही है मैच कराने के लिए, इसका उदाहरण मिलता है 1996 में। अगर आप याद करें 48 किलोग्राम वर्ग में पप्पू पहलवान और महाराष्ट्र के काका पवार के बीच इस तरह का मुकाबला हुआ था टीम
नहीं,
में।
अब इसका दूसरा भी है कि ठीक है ये हुआ था, पहली बात तो ये कि अगर एक गलती करी गई है तो उसको रिपीट ना करा जाए, और दूसरा एग्जाम्पल मैं ये दूंगा कि कृपा शंकर और उन्होंने योगेश्वर को जब चैलेंज किया था तो कोर्ट ने क्या बोला था, उस वक्त मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट कचहरी ने और न्यायालय ने ये बोला था कि जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने, जिस खिलाड़ी ने कोटा हासिल किया है और अगर वो फिट है तो उसे ही जाना चाहिए। तो अगर हम उस बात को मानते हैं तो इस बात को भी मानना पड़ेगा हमें। तो ये फिर घूम फिर के वही बात आती है कि नरसिंह ने कोटा लिया, वो फिट हैं, उनको जाना चाहिए। तो ये बड़ी अजीब समस्या जिसका समाधान मुझे लगता है कि हम अक्रॉस द टेबल नहीं कर पाएंगे।
आइए, इस समय धर्मवीर चौधरी इस टेलीफोन लाइन पर हैं अलवर से। धर्मवीर, आप सुन रहे हैं ये पूरी बहस, क्या कहना है आपका?
सर एक्चुअली मैं ये चाहता हूँ कि देखो दोनों पहलवान डिजर्व करते हैं। नरसिंह यादव वो अभी 4-5 सालों से बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी फॉर्म में आया है, और दूसरी तरफ जो सुशील कुमार है काफी समय से मतलब रेसलिंग में भारत का नाम बढ़ाया है उसने। तो मैं ये चाहता हूँ कि सर कि इन दोनों का ट्रायल, दो ट्रायल हो जाने चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा।
हम नॉरिस ये बताएं,
हम एक ट्रायल के लिए सोचने की मुश्किल हो जाएगी, आप दो ट्रायल कराएंगे तो दोनों ही नहीं जा पाएंगे।
नहीं नॉरिस ये बताएं क्या
अलग अलग डेट पे दो ट्रायल हो जाएगा तो भाग्य भी उसमें साथ नहीं होगा,
और फिर अगर दोनों बराबर हुए, एक एक ने जीता दूसरा दूसरे ने, तब
सर इसमें ये होगा अगर दोनों ट्रायल सुशील कुमार जीतता है तो उसको भेजो, अगर एक ट्रायल नरसिंह जीत जाता है तो उसको भेज दीजिए।
तो चलिए साहब ये नया फॉर्मूला दे रहे हैं कि 1-1 भी हो गया तो नरसिंह की बात। लेकिन ये बताइए कि जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, जानकारी के लिए, क्या दो लोग नहीं भेज सकते?
नहीं, कोटा एक का ही होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि वो हम ये चाह रही है इंटरनेशनल फेडरेशन की लोग कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा देशों में खेल को बढ़ाएं। अगर 2 या 3 अलाउ करने लगेंगे तो होगा क्या, भारत में रेसलिंग बहुत मशहूर है, वहाँ से आ जाएंगे, अमेरिका से आ जाएंगे, मंगोलिया से आ जाएंगे, जो छोटे देश हैं जहाँ पे कि वर्ल्ड इंटरनेशनल फेडरेशन कुश्ती के खेल को बढ़ाना चाहती है, वो लोग बिल्कुल नहीं आ पाएंगे। ये उनके लिए रखा गया है ये, और इसी का नतीजा है कि आज कुश्ती जो है वो एक ग्लोबल स्पोर्ट यानी यूनिवर्सल स्पोर्ट या विश्व स्तर का एक बहुत बड़ा खेल बन गया है, क्योंकि हर जगह से लोग आने लगे हैं।
नॉरिस, थोड़े से तकनीकी पक्ष की तरफ बात की जाए, ये आपको लगता नहीं कि सुशील कुमार थोड़ा सा अंडरवेट हैं? आपको फिटनेस पर कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना मसल गेन करना होता है, सुशील नाटे कद के हैं और उनका वज़न 77 kg है, और एवरेज 74 kg में पहलवानों का वज़न 80 kg होता है, जिसको कि वो बिल्कुल नज़दीक आते वक्त वो डिहाइड्रेट करके उसको कम करने की कोशिश करते हैं अपना वज़न कम करने के लिए। लेकिन सुशील जो कि जिनका कद भी थोड़ा छोटा है और वो अपने से बड़े वर्ग में कॉम्पीट कर रहे हैं, अगर वो इस तरह की चीज़ करेंगे तो इसका फर्क उनके स्टैमिना, उनकी ताकत पर नहीं पड़ेगा?
बिल्कुल, क्योंकि अगर वो सुशील को 74 में करना है तो 74 की ट्रेनिंग करने के लिए उनको कम से कम 80 किलो जिसके वेट जो होता है कुछ पहलवानों का वो दो किस तरह का होता है, जैसे कि आपने बोला एक ज़्यादा होता है जो ट्रेनिंग फेज में रखते हैं और जब कंपटीशन के वक्त आते हैं तो वो बराबर उसको कम कर लेते हैं। तो सुशील को अपनी छोटी हाइट पर कम से कम 80 किलो वेट लगाना पड़ेगा तब, और उस 80 किलो के लिए वो खूब खाना पड़ेगा उन्हें, और जब वो खाएंगे शायद स्लो हो जाए, मैं कह नहीं रहा कि हो जाएगा, लगता है, हम बात कर रहे हैं हर तरह की पॉसिबिलिटी की। मैं लास वेगस में मैंने विश्व चैंपियनशिप देखी थी और 74 किलो में नरसिंह यादव, जिसको हम बड़ा अच्छा और तगड़ा बता रहे हैं, वो शायद सबसे छोटे थे वहां पे, ये सोचिए, जो कि हम जिसको बहुत अच्छा बता रहे हैं तगड़ा बता रहे हैं वो भी छोटे थे। जॉर्डन बरोज उनके सामने बहुत बड़े एक दानव जैसे लग रहे थे, बाकी सारे भी ऐसे बड़े बड़े लोग थे। तो इसलिए ये एक ये भी जैसा कि आपने बोला कि वो छोटे हैं, उनको मेरे ख्याल से समस्या हो सकती है, और थोड़ा दोनों के मुकाबले में उनकी उम्र भी जो है थोड़ी ज्यादा है इस वक्त नरसिंह से। तो जो फुर्ती जो होती है, आफ्टरऑल कितना भी कोई प्रैक्टिस कर ले उम्र का भी तकाजा होता है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात।
बिल्कुल सही फरमाया। और इस बीच टेलीफोन लाइन पर कुछ और लोग, सबसे पहले तो अपना परिचय दें और बताएं कहां से बोल रहे हैं, फिर अपना सवाल पूछें।
अरुण कुमार सुमन, मैं बोल रहा हूं झारखंड से।
जी अरुण जी,
मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि नरसिंह यादव ने दो बार पीछे पहले कांस्य पदक जीता विश्व चैंपियनशिप में, उसका फॉर्म भी है। सुशील कुमार बड़े हैं, उनको बड़ा हृदय दिखाते हुए त्याग का परिचय देते हुए नरसिंह को भेजना चाहिए।
ये
अरुण जी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ ये बात कहने के लिए, जो मैं नहीं कह पा रहा था वो आपने कह दी। मेरे ख्याल सुनने वाले जो सुन रहे हैं वो भी इससे प्रेरित हों और भी इस तरह की बातें करी जाए। जिस खेल भावना की हम बात कर रहे हैं आपने उसकी ओर इशारा करा है, और दो मेडल जीतने वाला ओलंपिक मेडलिस्ट अगर ये बात बोल देगा सुशील, तो मेरा ख्याल है कि सारा हिंदुस्तान उनके साथ हो जाएगा और उनकी जितनी इज्जत अब होती है उससे कहीं ज्यादा होगी।
एक और
ओलंपिक पदक जीतने के बाद हमें खुशी मिलती और ये खुशी हमको अभी मिल जाएगी।
जी बिल्कुल सही बोला अरुण जी आपने।
अभी थोड़ा समय है, एक टेलीफोन हम और ले सकते हैं, देखते हैं कोई टेलीफोन लाइन पर है, समय बताएं कहां से बोल रहे हैं आप।
हेलो
जी, जी बताइए।
सर नमस्कार, सौरभ श्रीवास्तव गोंडा जिले दिनकरपुर से।
जी सौरभ, क्या कहना है आपका?
सर मेरा सवाल ये है कि नरसिंह यादव को ले जाना चाहिए था।
क्यों?
क्योंकि सर नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए।
ये कह रहे हैं नरसिंह यादव का हक बनता है क्योंकि नए खिलाड़ी हैं, सुशील कुमार कई ओलंपिक्स में हिस्सा ले चुके हैं,
शायद इनकी बात में थोड़ा दम हो, क्योंकि अगर इस बारी ले गए उनको, सुशील का देखिए कि जहां तक मैं समझता हूं ये उनका आखिरी ओलंपिक गेम्स होगा, बड़ा मुश्किल होता है आगे तक जाना इस उम्र में, अगर नरसिंह को ले गए इस बारी चला गए वो, तो शायद हम अगले जो खेल हैं टोक्यो में होने वाले वहाँ तक वो बरकरार रखेंगे अपनी फिटनेस, और हमें वहाँ पर उनसे पक्का मेडल लेने की उम्मीद हो जाएगी। तो किसी हद तक इनकी बात में थोड़ा दम जरूर है।
लेकिन नॉरिस ये बताइए, विश्व स्तर पर अभी आपने बोरोस का नाम लिया, जॉर्डन बोरोस का, नरसिंह यादव को क्या चांस देते हैं आप बोरोस के खिलाफ?
उसके खिलाफ शायद मैं चांस ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, लेकिन क्योंकि मैं आपको जैसे मैंने पहले बताया मैं लास वेगस में था और जॉर्डन बरोज ने मुझसे खुद बोला कि जितने लोग लास वेगस में वर्ष विश्व चैंपियनशिप में आए थे, मुझे अगर डर था तो वो सिर्फ नरसिंह का था और मुझे किसी से डर नहीं था, अगर मैं इससे होता तो शायद मैं हार जाता, ये नरसिंह बरोज के अपने शब्द थे। और उन्होंने उस मैच के बाद जब नरसिंह के बुला के उसको गले लगाया और बहुत उसकी उसको कामयाबी की बातें बताई और बोला कि तुम रियो के लिए तुम सबसे अच्छे खिलाड़ी मुझे लग रहे हो, ये जॉर्डन बरोस के शब्द जो मेरे पास रखे हुए हैं, तो इसलिए मानना पड़ेगा कि नरसिंह को अगर बाहर के जो लोग भी बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, जॉर्डन बरोस जैसा अगर उसकी इतनी तारीफ कर रहा है तो कुछ तो होगा बंदे में।
तो इसी पॉइंट पर इंडिया बोल को यहीं विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका नॉरिस प्रीतम। लेकिन कार्यक्रम की समाप्ति से पहले सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार, लेबनन के शिया चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला का कहना है कि सीरिया में उसके शीर्ष सैन्य कमांडर मुस्तफ़ा अमीन बदरुद्दीन की हत्या सुन्नी चरमपंथियों की गोलीबारी में हुई थी। बांग्लादेश में पुलिस ने कहा है कि करीब 70 साल के एक बौद्ध सन्यासी की दक्षिण पूर्व बंदरबान जिले में किसी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। रूस से आ रही रिपोर्टों में कहा गया है कि राजधानी मॉस्को के सबसे बड़े कब्रगाह में एक बड़े झगड़े में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई है। सीरिया से आ रही रिपोर्टों के अनुसार इस्लामिक स्टेट के लड़ाके पूर्वी शहर डेरल जोर स्थित एक अस्पताल पर हमले कर रहे हैं। और फीफा में ऑडिट और कंप्लायंस के प्रमुख ने संगठन की गवर्निंग बॉडी में सुधार के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। बीबीसी समाचार,
आज के कार्यक्रम में इतना ही। कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद की राजेश चौहान ने, रेहान फदल को, सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।